Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Sri Akhandanandagiriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और ये भी गारंटी नहीं है कि जो दवाई खाई थी उसके साइड इफेक्ट्स ना हो, वो बीमारी नहीं हुई तो उसकी वजह से कोई तीसरी बीमारी हो। तो इसलिए जहां नितांत निवृत्ति का शब्द नितांत लगाएंगे, दुख की नितांतिक निवृत्ति, उसका अर्थ ये है कि दुख दोबारा लौट कर भी ना आए और दुख का कोई साथ में और रूप भी ना बने और दुख 100% दूर हो जाए, रहे बिना और पूरी ऑथेंसिटी के साथ। देखो, ये दुनिया में सिर्फ भगवान कृष्ण एक ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरी अथॉरिटी के साथ, बड़े दावे के साथ ये बात की कि आप आओ, मैं सारे दुखों का इलाज बताता हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसके बाद कहते हैं अगर एक भी दुख रह जाए तो मुझे कह। तो इस तरह से वहां पर भी, क्योंकि कृष्ण या माम शब्द का जब अर्थ करते हैं तो उसका अर्थ आत्मा से ही है, उसका अर्थ उपनिषद वाले जितना भी करेंगे वो ब्रह्म से ही उसका अर्थ करेंगे। तो यहां पर बात ये हुई कि शरीर के स्तर पर जो कुछ भी आप भोग भोग रहे हो, अगर ये याद बनी रहे, बात फिर वही थी कि शब्द पर टिके रहो, इस बात पर टिके रहो, सुख मुंह से निकला तो समझ लो ये इसका संबंध शरीर से, इसका संबंध वासनाओं से, इसका संबंध दुख से। दूसरा शब्द होता है प्रसन्नता, कि मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता का संबंध मन से है, शरीर से नहीं। मन प्रसन्न होता है। हम कहते हैं, जैसे आप लिखते भी हो, इनविटेशन कार्ड में लिखते हैं कि आप आओगे तो हमें प्रसन्नता होगी, वहां ये नहीं लिखते कि आप आओगे तो हमें बड़ा सुख मिलेगा, वो लिखते हैं आप आओगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। प्रसन्नता का अर्थ होता है इसका संबंध मन से, और मन के लिए भोग तो मन को भी चाहिए जैसे शरीर के थे, लेकिन मन के भोग सूक्ष्म होते, शरीर के भोग स्थूल होते। मन के भोग जैसे संगीत, हमने अच्छा सा भजन सुना, अच्छा सा गीत सुना, कोई बहुत बढ़िया सी कविता सुनी, मन प्रसन्न हो गया। और हम इसीलिए ये जितना म्यूजिक सिस्टम आप कह लो, पेंटिंग्स कह लो, स्थापित्य कला को ले लो, काव्य को ले लो, संगीत को ले लो, ये सब सूक्ष्म भोग हैं, ये मन के भोग हैं। इनसे मन प्रसन्न होता है, इससे शरीर का कोई संबंध नहीं। इससे सुख नहीं मिलता, प्रसन्नता मिलती। देखो, कर्म कांड में जब हम कर्म करें तो वो स्थूल शरीर के भोग हैं, यज्ञ करो, हवन करो, भंडारा करो, लोगों को खाना खिलाओ, अपने आप भी खाओ, वो स्थूल। और जब हम कीर्तन करते हैं, वो करते हैं, तो वो प्रसन्नता वो मन के स्तर पर, उपासना कर लो, कीर्तन कर लो, ये कर लो, ऐसे सब चीजें, तो ये सूक्ष्म भोग हैं, लेकिन हैं ये भी भोग। भोग में कोई अंतर नहीं है, असुर और देवता दोनों बराबर है। असुरों में और देवताओं में युद्ध तो होता ही रहता है, हैं भी दोनों भाई, दोनों ही कश्यप की औलाद हैं, ऐसा नहीं है कि इनका बाप कोई अलग हो। फर्क सिर्फ इतना ही है कि जिनको हम असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं, उनके भोग स्थूल हैं और देवताओं के भोग सूक्ष्म। देवताओं के स्वर्ग में इंद्र के पास उर्वशी है, वहां वीणा वादक बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठे हुए हैं, सरस्वती वीणा बजा रही है, और जिनको हम असुर कहते हैं उनके पास दूसरे हैं, हमारे जैसे वीणा बजाने वाले, उनको ले जाए, वो सुनते रहो, उनके पास जरा सुपीरियर किस्म के हैं और इनके पास वो है। फर्क इतना ही है जितना मतलब मारे जुड़ना भांग, गांजा या इम्पोर्टेड विस्की का, लेकिन है दोनों ही भोग में, ऐसा नहीं कि कोई छूट गया हो इनमें। तो इस तरह से इन दोनों के स्तर तक जब तक रहोगे तब तक रस के बहुत दूर। और क्योंकि रसो वैसा पहुंचना रस तक, उसके बीच में क्यों आप कभी भी स्वयं जब बैठकर विचार करेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं तो अभी शरीर के स्तर से ही ऊपर नहीं उठ पाया, मन तक भी नहीं पहुंचा मुझे तो अभी। अभी देखो मन के स्तर पर भी, जो मन के स्तर पर उठते हैं वो जैसे कभी आपने सुना होगा, स्वयं का अनुभव भी कभी हो सकता है कि कभी कोई भगवान की ऐसी कृपा रही हो कि बहुत सात्विक मूड में हैं आप, बड़ी सात्विक वृत्तियों में हैं, तो किसी बाग में चले जाओ, किसी झील के किनारे चले जाओ और खिले हुए फूल को देख के आपको दुनिया भूल जाए, आप उस आनंद में पहुंच जाओ। थके हुए लोगों का ऐसे ऐसे भी उदाहरण है कि वो कहते हैं जो ही बागीचे में पहुंच गया मेरी थकावट उतर गई। अब बतलाओ फूल का थकावट से क्या संबंध है? आम आदमी तो कहता है कि मसाज करने वाले को बुलाओ, वहां से ये बात उतरेगी। अब तो मसाज करने वाले को बुलाने की जरूरत भी नहीं। मैं गया था प्रकाश भाई के ऑफिस में, वहां एक कुर्सी है उस पर बैठ जाओ वो अपने आप ही मसाज शुरू हो जाते, तो बाहर की भी अब वो भी चक्कर खत्म हो गया। अब जब हमारा थकावट उतारने के लिए इन चीजों की जरूरत है तो फूल से हमारी थकावट उतर जाए ये तो कल्पना ही छोड़ दो, क्योंकि हम स्थूलता में दिन प्रतिदिन और बढ़ रहे हैं। अब ये संभव नहीं है कि आपके ऑफिस में ताजा फूल रखा हुआ हो और देखते ही आप मस्ती में आ जाओ, ये तो कल्पना है। ये कल्पना भी सात्विक है, अच्छी है, शुद्ध है, ये कल्पना बनी रहे थोड़े से और 5-10 साल ये भी बहुत, क्योंकि इसके बाद ये कल्पना भी नहीं रहनी। इसके बाद जितना भी जैसे भौतिकता का युग आ रहा है उसके बाद क्या होगा वो तो हम नहीं देखेंगे, लेकिन ये कल्पनाएं भी नहीं रहेंगी। अभी तक तो समझ लो कि उपनिषद को सुनने उपनिषद को जानने का मन के अंदर शौक है, ये सिद्ध करता है कि सात्विकता खत्म नहीं हुई, मन अभी है इधर को। चाहे कितना भी हम संसार में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी ढूंढ रहे हैं कुछ और जिसको हम स्थायी सुख कह सकें। तो ये जो मन की बात मैं कह रहा था कि वो भी है तो भोग ही, लेकिन वो सूक्ष्म भोग। सूक्ष्म भोग के लिए जब हम ये सब असल में अपने लिए ये शब्द है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं इससे मुझे सुख मिल रहा है या प्रसन्नता, अगर ये ध्यान नहीं रखेंगे आप कभी भी तो हम अपने जीवन में यही साधना है। वेदांत की साधना वो नहीं है कि आप सुबह शीर्षासन करो, वेदांत की साधना ये नहीं है कि आप इतने घंटे इतनी मालाएं जाप करो कि पूर्व की ओर मुंह करके ऐसा करके वो करो तो जो होगा, ये वेदांत की साधना नहीं। वेदांत की साधना यही है कि ये शब्द याद रखो और अपने पर नजर रखो कि मैं इस समय स्थूल में हूं या सूक्ष्म। इसी को इस उपनिषद में जागृत और स्वप्न कहा गया, बात इसी उपनिषद की ही है। मैं उसको दूसरे ढंग से जरा समझाने की दृष्टि से ये उसका विस्तार कर रहा। तो स्थूल आप देखो, जैसे आज के युग में एक ये रवाज बना हुआ है, ये एक प्रथा बन गई कि लोग वीक एंड पे सैटरडे संडे को लोग यहां से दौड़ते हैं, कहते हैं वो चलो ये 2 दिन जो हैं लोनावाला में गुजार के आएंगे, ये 2 दिन जो हैं सिलवासा में चलते हैं, ये 2 दिन दमन में जाएंगे। क्यों जाएंगे 2 दिन दमन में? वो कहते हैं हफ्ते भर की थकावट उतार। आगे दमन में और सिलवासा में थकावट उतारना एक इंडस्ट्री बनी हुई है, ये होटल जितने भी हैं वो बकायदा एक इंडस्ट्री है थकावट उतारने की, उनकी बकायदा फीस है, उनका वो है, वो हर तरह की उन्होंने सुविधाएं रखी हुई हैं। और आप यहां से देखो पहला सिद्धांत तो ये है कि जिस जगह आप जो काम कर रहे हो अगर उसमें आपको थकावट होती है तो कहीं खराबी या तो आपके अपने दिमाग में या आपका काम बहुत ईमानदारी का नहीं। नहीं तो शास्त्र कहते हैं तुम्हारा काम ही तुम्हारी आराधना। काम में ही कुछ लोग कई ऐसे देखो कई लालची भी होते हैं, उनको काम से फुर्सत नहीं। ये उनके लिए नहीं मैं कह रहा, बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि जो लोभ के कारण काम को ना छोड़े, रात 12-12 बजे तक बैठे, वो आराधना समझ के नहीं इसको कर रहे। आराधना वाला तो उतना ही करेगा जितना सा जरूरी है और ईश्वर का सौंपा हुआ काम अपना नहीं। जब हम अपना समझ के करेंगे तो दिन रात करेंगे, और अगर किसी का सौंपा हुआ करोगे तो उतना ही करोगे टाइम के अंदर, लेकिन करोगे ईमानदारी से। और अगर ईश्वर का सौंपा हुआ समझ के करोगे तो ध्यान रखोगे कि जैसे मालक की नजर हर समय रहती है काम करने वालों पर, आपके पास कितने कितने काम करने वाले हैं, आप अपने कमरे के अंदर बैठे ही वो टीवी लगा रखा है, कैमरे हर एक पर नजर है कि कैसे जा रहा है, और जिसने हमें भेजा हुआ है उसकी कितनी नजरें हैं। तो बस आप तो हजार बार उसके गीत भी गाते हो कि कितनी करोड़ों करोड़ों असंख्य नजरें हैं उसकी, असंख्य हाथ हैं उसके, असंख्य पैर, तो उसकी तो हर एक पर नजर है। तो अगर जो कुछ भी हम करते हैं किसी का सौंपा हुआ, और वो भी सौंपा हुआ जो परम मालक है इस दुनिया का, सबसे सबका मालक जो है, तो उसका सौंपा हुआ समझकर अगर काम कर रहे हैं तो थकावट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और ये जो थकावट उतारने की बात हम सोचते हैं कि चलो वहां चलेंगे थकावट उतर जाएगी, ये होगा, और वास्तविकता ये है कि मानसिक रूप से आप पता नहीं लगता आदमी को, लेकिन थकावट उससे दुगनी हो जाती। एक तो आने जाने की टेंशन, यहां से दौड़े जा रहे हैं वो हो रहा है, और टाइम थोड़ा है, अगले दिन लौट के जरूर आना है, रास्ते में 10 बार टेलीफोन, जहां पहुंचना है वहां भी करेंगे, कमरा तैयार है या नहीं, पीछे घर पे भी करेंगे कि वो खिड़की बंद हो गई या अभी तक खुली हुई है, दोनों तरफ की टेंशन, और दौड़े जा रहे हैं उधर को, घड़ी भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, मोबाइल भी लगा हुआ, अखबार भी पढ़ रहे हैं। तो ये थकावट उतारने का अजीब सा ढंग आ गया ये। और जहां आप पहुंचोगे, याद रखो आपकी थकावट उतारने के लिए वहां 20 आदमी थके, क्योंकि वो रात को जागेंगे, कपल पता नहीं साहब ने कब घंटी बजा देनी है, क्योंकि वहां एक दिन के 10,000 रुपया किराया भी हो सकता है। और उसका अर्थ ये है कि आप अगर गलती से भी सोते हुए भी घंटी पर आंख लग गया तो कोई ना कोई आ जाएगा, नहीं तो आप उठ के कहोगे कि क्या होटल है, क्या इसलिए पैसे दिए थे, मैं 2 बार घंटी बजाई अभी तक कोई नहीं आया। तो असल में क्योंकि यहां सारा दिन 10-10 बार घंटी बजाओ तो कोई नहीं आता, घर वाले तो सुनते नहीं है, वहां जाके आदमी को लगता है कि बस एक ही बार बजाने में आ जाए तो उसके अहम की पूर्ति हो जाती है। यहां आवाज दे दे के थक जाओ, पकड़ के लाओ। तो ये जो सूक्ष्म भोग है इससे हमें सुख कहां तक मिलेगा। बात यह हो रही है कि थोड़ी देर के लिए शरीर के स्तर पर जो कुछ भी आपको मिला उसको तो हम सुख कह लेते हैं। सुख बहुत क्षणिक होता है और दुख में जल्दी बदल जाता है। सुख का उतनी देर तक ही होता है जैसे मतलब बस शाम को फीस्ट है, खाना पीना हुआ और सुबह तक सारा खत्म है, थकावट ही थकावट है। कितना भी बढ़िया हमने डिनर अरेंज किया हो, लोगों को बुलाया हो, सबको हाथ मिलाए हो, लेकिन बस वो सुबह जब बिल देने पड़ते हैं सबके तो उस समय वो सारा सुख खत्म हो गया होता है। फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं कि इतने पैसे थोड़े थे, पहले तय करके आता, यूं करके आता, वो करके आता। लेकिन मन के स्तर पर जिसको हम उपासना कहते हैं, जिसको हम हरि नाम संकीर्तन कहते हैं, जिसको हम भजन संध्या कहते हैं, या हम क्लासिकल म्यूजिक की कोई शाम लें, कुछ भी करें, तो मन के स्तर पर प्रसन्नता होती। इसमें सब ललित कलाएं आ जाएंगी, प्राकृतिक सौंदर्य भी प्रसन्नता का कारण बनता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा संवेदनशीलता, संवेदनशीलता का मतलब सेंसिटिविटी, थोड़ा सा हृदय की पवित्रता और कोमलता चाहिए इन बातों को एप्रिशिएट करने के लिए। आम आदमी तो क्लासिकल म्यूजिक भी नहीं एप्रिशिएट कर सकता। आम आदमी के लिए कोई सितार बजाने बैठ जाए, लोग पांच मिनट बाद उठ के चले जाते हैं, वो कहते हैं कुछ बोल तो रहा नहीं है, बस तार सी हिला रहा है अभी। तो उसके लिए भी एक अलग तरह की मानसिकता है, लेकिन जो उसमें से ले सके फिर भी वो स्थूल से थोड़ा ठीक, क्योंकि मन के प्रसन्न रहने वालों ने कभी उपद्रव नहीं किए। उपद्रव का मतलब जो शरीर के स्तर सुख लेने वालों ने, जितने भी इतिहास के युद्ध हैं, जितने भी आक्रमण हैं बाहर, इस देश पर आक्रमण, उस देश पर आक्रमण, इसको लूट के ले जाओ, उसको लूट के ले जाओ, या रोज जो अब भी आप पढ़ते रहते हैं कि वहां झगड़ा हो गया या लड़ाई हो गई, इतने लोग मारे गए, इतने वो हुआ, वो सब सुख वाले। सूक्ष्म वालों ने कभी लड़ाई नहीं की, क्योंकि इसमें सब कवि, कलाकार, अफसाना लिखने वाले, इन्होंने कभी, आज तक आपने सुना नहीं होगा कि कवियों ने मिलकर किसी देश पर हमला कर दिया या किसी की कुछ चीज लूटने की बात की हो। ये आपस में भी इनके झगड़े नहीं होते, आपस में भी अगर कभी इनके झगड़े हुए हैं तो कविताओं में ही हुए हैं। कभी अगर इकबाल ने कोई शेर लिखा तो उसका जवाब आगे जौक ने दे दिया, जौक ने लिखा तो उसने दे दिया। अर्थात इनकी लड़ाई हलवाइयों की लड़ाई है, जैसे हलवाई दो लड़ पड़े तो लड्डू मारेंगे एक दूसरे को, उसमें लोगों का लाभ है, उनके पास तो और कुछ है नहीं, मिठाई है, क्या करेंगे वो, तो इसलिए वो लड्डू मारते चले जाएं, लोगों को आनंद है, देखने वालों को। तो ये जो सूक्ष्म भोग वाले हैं, कवि आदि हैं, इनकी लड़ाई बस वो लड्डुओं की है, दूसरों को आनंद है, इसका शेर भी याद किया, उसकी कविता भी याद की, उसका भी किया, तो हम आगे बढ़ते रहते। सुख है, प्रसन्नता है, फिर आनंद है। आनंद बुद्धि का भोग है, आनंद का संबंध बुद्धि से है, इसका संबंध खाने पीने से नहीं, खाने पीने से संबंध सुख का, सुनने सुनाने से, देखने दिखाने से संबंध मन का है, प्रसन्नता का, इसका संबंध चिंतन से, आनंद का संबंध चिंतन से है, बुद्धि से है। इसीलिए चेतो आनंद भुक, नींद के लिए चेतना की बात आई और आनंद का भोग करता है। तो बुद्धि को आनंद मिलता है शब्दों की पकड़ से। इसमें ब्रह्म क्या है, अध्यारोप अपवाद क्या है, उपाधि किसको कहते हैं, इस तरह की जो बातें, उनको जितना जितना हम समझते हैं, जितना जितना स्वयं चिंतन करते हैं, बुद्धि शांत होती। ये जिज्ञासु का आनंद है, ये जिज्ञासु का भोग है, आनंद का भोग जिज्ञासु का है, जिसके मन में जिज्ञासा है। जिसके मन में जिज्ञासा नहीं है उसका आनंद से कोई संबंध नहीं। जिज्ञासा का अर्थ होता है कि जैसे हम कुछ भी फर्ज करो रामचरित मानस पढ़ रहे, तो रामचरित मानस में ये बात आ गई, ईश्वर का निरूपण हुआ कि वो बिन पग चले सुने बिन उकाना, बिन कर कर्म करे ही विधि नाना, उसके पैर नहीं है फिर भी चलता है, कान नहीं है फिर भी सुनता है, हाथ नहीं है फिर भी पकड़ता है। तो ये हमने पढ़ा, अगर हमने इसको पढ़ लिया ठीक है, इसको गा लिया साथ में, जय सिया राम जय सिया राम, तबला ढोलक बजा के आगे निकल गए तो ठीक है, तो वो हमें प्रसन्नता मिलेगी। अगर बुद्धि में ये बात आ जाए कि ऐसी कभी कोई चीज, कोई ऐसा हमने देखा नहीं कि पैर भी ना हो और चले और कान भी ना हो और सुने, तो ये तो कभी संभव ही नहीं। तो ये जिसके मन में ये जिज्ञासा जागृत हो जाए, वो इसको पूछने के लिए चलेगा, संतों के पास, गुरुओं के पास, महात्माओं के पास, या जो भी अपने आप को आध्यात्मिक व्यक्ति समझ, वो जाके अपनी ये बात रखेगा उनके सामने कि महाराज ये पढ़ा है और खूब पढ़ा है, बहुत कुछ करते में समझ में नहीं आ रहा, तो जरा थोड़ा पता लगे कि ये क्या है जो बिना पैर के चलता है, जो बिना कान के सुनता है, जो बिना उसके वो कोई एक बात को सुन लेना कि वहां पर ऐसे हुआ कि वो भगवान ने छलांग लगा दी यमुना में, नीचे वो कलिया नाग था, उसके 1000 फन थे, उसकी इतनी पत्नियां थी, नागनियां थी, वो भी वहां बैठी हुई थी, फिर उनका झगड़ा हुआ, फिर भगवान छलांग लगा के उसके सिर पर चढ़ गए और वहां नृत्य करने लगे, बांसुरी बजाने लगे। अगर तो ये सुन के और गीत बना के कि कलिया के नथैया तेरी जय हो, राम बंसी के बजैया तेरी जय हो, तो वो तो हो गया, मन की प्रसन्नता तक ठीक। लेकिन अगर ये बात मन में आ जाए कि ये संभव नहीं, ऐसा कभी होता नहीं, और ये क्या हमारे ऋषि रहे हैं, व्यास जी ऐसे नहीं कही हैं, तो कोई ना कोई इसमें बात होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं जिज्ञासा मन के अंदर जागृत हो कि ये बात क्योंकि ऋषियों ने कही है और सब लोग इसको आज तक दोहराते चले आ रहे हैं, दोहराते ही नहीं, उसकी फोटोएं बना बना के मंदिर बने हुए हैं, उसकी फोटोएं इतनी बिक गई कलिया नाग के ऊपर कृष्ण बैठे हुए कि इस्कॉन वालों ने करोड़ों रुपए का व्यापार उसका कर लिया। ये तो उसका लाभ हुआ, लेकिन किसी के मन में सचमुच में जिज्ञासा जागृत हुई हो कि ये क्या रहस्य है, ऐसा कैसे संभव, तो जिसके मन में ये बात जागृत होगी वो उठ के चलेगा। देखो कई बार आप इनका इतिहास पढ़ो, आज के युग के भी जो अच्छे अच्छे संत हुए हैं उनमें हमारे स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती महाराज भी एक हैं, और भी हुए कि कोई एक शब्द इनके मन में आया, समझ नहीं आया, तो ये पैदल चल के 50-50 मील पैदल चल के पहुंचे हैं उस शब्द को जानने के लिए किसी से कि ये क्या। तो ये उन लोग आनंद तक वो लोग पहुंचते हैं, मेरा कहने का कि हम तो सुख तक ही हैं, बहुत थोड़ा बहुत हुआ तो प्रसन्नता तक भी कभी कभी आ गए गीत संगीत में, बस इससे हमारा यू टर्न है, फिर वापस ही है अबाउट टर्न, आगे आनंद वाली बात भी आ गई हो, किसी के कभी ऐसी जिज्ञासा जागृत हुई हो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, ये उसी के ही रहेगी जिसके मन में हर समय रस शब्द रहेगा कि अंतम मंजिल रस है। तो जब आप देखो सुख का संबंध शरीर से रहा, प्रसन्नता का संबंध मन से रहा, आनंद का संबंध बुद्धि से रहा, शरीर मन और बुद्धि ये तीनों ही पर प्रकाशय, इनकी अपनी सत्ता नहीं है, ये आत्मा की सत्ता से सत्तावान, आत्मा ना हो बीच में तो ये किसी काम के नहीं। तो हम शरीर के लिए कई कुछ करते हैं, मन के लिए कई कुछ करते हैं, बुद्धि के लिए कई कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या किया हमने? क्योंकि उसके लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अंत में हम दुखी ही रहे, सुख भी दुख में बदलेगा, प्रसन्नता भी थोड़ी देर में भूल जाएगी, आनंद भी कुछ देर तक ज्यादा टिकेगा, सुख कम प्रसन्नता ज्यादा आनंद और ज्यादा, लेकिन आनंद भी करते करते आगे फिर नई बात निकाल लेगा कोई कि अब ये कैसे, फिर उसकी खोज। तो बात तो तब तक नहीं बनेगी जब तक आत्मा तक ना पहुंच, आत्मा को ही रस रूप कहा गया, वहां जाने के बाद फिर किसी और चीज की जरूरत नहीं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर, शरीर मन और बुद्धि ऐसा समझ लो, सो जाना बुद्धि तक का है, बुद्धि सो गई तो सब सो गया, स्वप्न मन देखता रहता शरीर से आप परिचित, इन तीनों में जो अलग है, ये तीनों से जिसका कोई संबंध नहीं, तीनों ही जिसकी वजह से हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को तुरीय तत्व कहते हैं जिसका उल्लेख इस उपनिषद में है। तो इस तुरीय तत्व पर कैसे पहुंचे इस बात को लेकर फिर कल चर्चा करेंगे। ओम।